राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दा, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी।
गोपी जन
Oh,
Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Hare.
Hare
वंशी विभूषित करा नवनीर नामा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने यस्या कदापि वसना चलखेलनोत धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभुवो दिशेपि यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिष्ठतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हपुराणगुह्यम् तं यासोनमुपया मि गुरो मुनीना लीलाशुकोसो वृषभानुजाया पवित्रचञ्चु प्रियचुम्बनेन एकान्तिको नन्यरहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्वा मृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता ज ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महत भी यही मा पुरो विभो निर्माय शेते यदमोष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो रसषोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे હરે કૃષ્ણ. તો આપ સબ ભક્તો કા અંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવના મૃત સંઘ કી ઓર સે પ્રસ્થાપિત સાત દિવસીય इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं. द पाथ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम के इस द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं. किस प्रकार से हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वास्तविक स्वतंत्र बन सकते हैं, आने वाले 6 दिनों में हम यह श्रवण करेंगे. कल हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया कि हम लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, परंतु वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं. स्वतंत्र नहीं है और हमारी स्वतंत्रता के ऊपर कई सारे बंधन लगे हुए हैं. एक दो नहीं, सैकड़ों जगह से हम लोग बंधे हुए हैं. मन के द्वारा बंधे हैं, बुद्धि के द्वारा बंधे हैं, अहंकार के द्वारा, शरीर के द्वारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सत्व रजस तमस काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि अनेक अनेक बंधनों से सभी जीव बंधे हुए हैं. और यदि ये बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा. ज्ञान के द्वारा इस बंधनों से हम मुक्त कर सकते हैं और यह ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त करना होगा. कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से यह वेद भगवान निर्माण करते हैं, भगवान के द्वारा वेद निर्माण होते हैं. धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का निर्माण भगवान करते हैं और वह धर्म का उल्लेखन वेदों में होता है. वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात नारायण है. गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, जाके वेद श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी. यह वेद भगवान के सांस से निकलते हैं. स्वयंभू इति सुश्रुम स्वयंभू है. और ऐसे वेद उपनिषद पुराण इतिहास महाभारत ये सभी निगम कल्प तरु का यदि कोई पका हुआ फल है, समस्त वेदों का फल श्रीमद् भागवतम है. और मित्रों, इस भागवत नामक पवित्र ग्रंथ में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि हम किस प्रकार वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं. श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का भाष्य है. वेदों के जितने भी सिद्धांत हैं, वेदों के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, ये सब श्रीमद् भागवत में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसे सुनने मात्र से हमारे हृदय में पवित्रता आती है और सुनने के बाद यदि हम इसे जीवन में धारण करते हैं तब तो यह जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाता है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, अनेक अनेक कथाओं का निरूपण हुआ है, परंतु श्रीमद् भागवत में से हम यहां पर वह कथा सुनेंगे जिस कथा में और जिस कथा से हम वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम वास्तविक स्वतंत्र हो सकते हैं। मित्रों, स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, परंतु किसी भी सिद्धांत का निरूपण करने के लिए बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु और बड़े बड़े टीचर इतिहास सुनाते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल इतिहास नहीं सुनाया जाएगा तब तक उस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है। और यदि हम इतिहास को जानते हैं, इतिहास को जानकर उस पर विश्वास होता है और हमारे जीवन में प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर घटना, बहुत सुंदर कथा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, और सभी भक्तों को यह ध्यान देना चाहिए कि यह घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं है। जैसे संसार में लोग सुनाते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों का विवाह हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई वास्तविक घटना। बहुत वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी थी, एक साथ 10,000 बालक स्वतंत्र होना चाहते थे और भगवान के परम भक्त के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा एक दो नहीं 10,000 युवक वास्तव में स्वतंत्र हो गए। कथा बहुत पुरानी है परंतु सत्य है, और ये कथा प्रारंभ होती है भगवान विष्णु अपने अनंत कोटि रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्राकट्य करते हैं, और उस ब्रह्मांड में गर्भोदयशायी विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप इस जगत की सृष्टि करो। आदेश के साथ साथ भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस आदि कवि इस संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और कहा कि इस सृष्टि का सर्जन करो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करके इस सृष्टि का सर्जन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी सर्जन करने लगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया, सनक, सनातन, 4 कुमार, नारद जी, शिव जी, कई पुत्रों को जन्म दिया, परंतु कुछ पुत्रों ने विवाह करने के लिए ना कह दिया। शिव जी ने हां कहा परंतु सृष्टि का कोई ठिकाना नहीं रहा। तत्पश्चात काल बीतते ही ब्रह्मा जी से एक विशेष पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम था दक्ष, और इस दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजा का, संसार का नायक बनाया, प्रजा का पति बनाया, इसलिए उसका नाम ही हो गया दक्ष प्रजापति। जो प्रजा का पालन करता हो। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। प्रजा का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ और जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आदेश दिया कि आप बालकों को पैदा करो, कई सारे बालकों को जन्म दो और ये सभी बालकों का विवाह करा के सृष्टि को आगे बढ़ाओ। दक्ष प्रजापति सृष्टि करना चाहते थे, इसलिए सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। पहले के लोग यह जानते थे कि यदि विवाह करना हो, सृष्टि करना हो, तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। दक्ष प्रजापति वन में गए और वन में जाकर भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर स्तुति की और उस स्तुति का नाम है हंस गुह्य स्तुति। हंस गुह्य स्तुति की और इस स्तुति के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए। यह सत्य है, भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो स्तुति करनी चाहिए। स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, साक्षात भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और दक्ष प्रजापति भगवान का दर्शन करके वापस अपने घर आ गए। जब दक्ष प्रजापति अपने घर पर आए तब दक्ष प्रजापति ने क्या किया, यह कथा श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में पंचम अध्याय में बताई गई है। कथा सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी हैं, सुनने वाले महाराज परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच, तस्या स पांचजन्या विष्णुमायोपवर्णित हर्यश्व संज्ञानयुतं पुत्रान जनयद्विभो। दक्ष प्रजापति घर पर आए हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विष्णु मायोपवर्हितम तस्याम स पांच जन्याम वे। दक्ष प्रजापति ने पांचजन नाम के एक राजा थे और उसकी बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था पांचजनी। तो पांचजनी के साथ दक्ष प्रजापति ने विवाह किया और विवाह करने के बाद दक्ष प्रजापति की इच्छा हुई कि मैं बहुत सारे पुत्रों को जन्म दूंगा, मैं विवाह करके बहुत सारे पुत्र को पैदा करूंगा। यहां पर एक प्रश्न उठना बहुत उचित है कि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का दर्शन कर चुके थे, भगवान के सुंदर रूप का शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि इतना सुंदर रूप का दर्शन किए, फिर भी दक्ष प्रजापति की आसक्ति संसार में क्यों है? जो व्यक्ति भगवान को देख लेता है वह सारे संसार को भूल जाता है और इतने सुंदर सुंदर अति सुंदर मधुराति मधुर भगवान विष्णु का दर्शन करके दक्ष प्रजापति आए हैं, फिर भी पांचजनी के साथ विवाह करके कई सारे पुत्रों को पैदा करने के लिए सोच रहे हैं। इसका कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विष्णु मायोपवर्हितम, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु की माया से ग्रसित थे, विष्णु, भगवान विष्णु की जो माया है दक्ष प्रजापति के मन में संचार हो चुकी थी। बरहितम माने संचारित होना, और विष्णु की माया के कारण दक्ष प्रजापति रात दिन सोच रहे थे कि सैकड़ों पुत्र उत्पन्न करूंगा, सबका विवाह कराऊंगा। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है क्या उसे भी भगवान की माया सता सकती है? जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो गया उसे भी भगवान की माया सता सकती है, तो फिर भगवान के दर्शन का क्या लाभ? तब कहते हैं भगवत संकल्पनेन व्याप्त, कहते हैं वास्तव में दक्ष प्रजापति के मन में संतान उत्पत्ति करने का जो विचार आया यह विचार भगवान विष्णु की इच्छा से आया। ये भगवान विष्णु की ही इच्छा थी कि दक्ष प्रजापति कई सारे पुत्र को उत्पन्न करे। तो कहते हैं तस्याम स वे दक्ष प्रजापति पांच जन्याम पांच जनी नामक पत्नी से विवाह करके हरियश्व संज्ञा युतम पुत्रान जनयत विभु। दक्ष प्रजापति ने पांच जनी नामक पत्नी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। अब सबको यह आश्चर्य लग सकता है कि 10,000 पुत्र एक साथ कैसे जन्म ले सकते हैं। आज किसी मां के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है, दो पुत्र जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन पुत्र जन्म लेते हैं। ये दक्ष प्रजापति को एक साथ 10,000 पुत्र प्राप्त हुए, कारण क्या था? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विभु, दक्ष प्रजापति के ऊपर भगवान की कृपा थी, भगवान का अनुग्रह था, और भगवान का अनुग्रह होने के कारण वि माने विशेष, विपुल और भू माने प्रभाव, भगवान की कृपा से दक्ष प्रजापति विपुल प्रभाव वाले हो चुके थे, इसलिए 10,000 पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ हुए। वास्तव में भगवान की यदि कृपा हो जाए तो एक व्यक्ति 10,000 पुत्र को जन्म दे सकता है, और यदि भगवान की इच्छा न हो तो 10,000 की बात छोड़ दीजिए, एक पुत्र भी नहीं हो सकता है। इस संसार में देखा गया है कुछ लोग पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की कामना करते हैं, परंतु बहुत परिश्रम करने के बाद भी एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। और कुछ लोग पुत्र नहीं चाहते तो उसे 4-5 पुत्र हो जाते हैं। ये भगवान की इच्छा है, ये संतान मिलना, प्रजा की उत्पत्ति होना, ये सब भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। कुछ माता पिता को भ्रम होता है कि मैंने मेरे पुत्र को जन्म दिया है, मैंने बड़ा किया है, परंतु आप विचार कीजिए जब वह बालक गर्भ में था तब उसे भोजन कौन दे रहा था? उस मां को भी नहीं पता होता है कि मैं जितना खा रहे हूं उसमें से कौन सा हिस्सा उस लड़के के पास जा रहा है और कैसे जा रहा है। डॉक्टर भी आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि वहां ऑक्सीजन कौन देता होगा, सांस कौन देता होगा, भोजन कौन देता होगा। भगवान देते हैं। तो ये संतान प्राप्ति होना ये भगवान के ऊपर निर्भर होता है। कहते हैं भगवान की कृपा से दक्ष प्रजापति पांच जनी के गर्भ से 10,000 पुत्र को जन्म दिए, और उस पुत्र का नाम था हरियश्व। जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र को कौरव कहा जाता है, पांडु राजा के 5 पुत्र थे तो तो उस पांच पुत्र को पांडव कहा जाता है। वैसे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, इस 10,000 पुत्र को हरियश्व कहा जाता है। कहते हैं हरियश्व संज्ञा अनयुतम, हरवश्य संज्ञा वाले हरियश्व नाम वाले 10,000 पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र की विशेषता क्या थी? सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में कहते हैं, अपृथग धर्मशीलास्ते सर्वदाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिं प्रययूर्दिशम्। हिन्द्रिप हे राजन, ते सर्वे दाक्षायणा अपृथक धर्मशीला, ते वे समस्त दाक्षायणा अर्थात दक्ष प्रजापति के पुत्र कैसे थे? कहते अपृथक धर्मशीला, सभी पुत्र के मन, सभी पुत्रों की बुद्धि और सभी पुत्रों के शील माने आचरण समान थे। आज संसार में देखा गया है दो भाई होते हैं परंतु दोनों के आचरण अलग अलग होते हैं, एक सबसे बड़ा पापी होता है और एक सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। परंतु 10,000 पुत्र होने के बाद भी 10,000 भाई थे, 10,000 के जो शील था, जो आचरण था, समान आचरण था। अपृथक धर्मशीला, धर्म और शील पृथक पृथक नहीं थे, अपृथक थे अर्थात समान थे। अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षणा नृप, और जब वह 10,000 पुत्र थोड़े बड़े हुए, 4-5 साल के हुए, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे। जब ये 5 साल के हुए तो प्रजा सर्गे, प्रजा की सर्ग माने उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए पिता प्रोक्ता दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे, उन्होंने प्रोक्ता उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रतिचिम प्रययुर दिशम, हे मेरे पुत्रों, यदि तुमको संसार में सक्सेस होना है, स्वतंत्र होना है, पढ़ लिख कर विवाह करना है, बहुत बड़ा बनना है, तो सबसे पहले तुम्हें तपस्या करना होगा। देखिए दक्ष प्रजापति इस संसार का सबसे बड़ा आसक्त व्यक्ति, परंतु वह आसक्त व्यक्ति भी यह जानता है कि यदि पुत्र को ठीक से गृहस्थ जीवन जिलाना है तो उसे तपस्या करानी होगी। बिना तपस्या के व्यक्ति ठीक से गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकता है। इसलिए आप देखिए भगवान के द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण हुआ है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहा गया है कि 25 साल तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और बाद में 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं और 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और तत्पश्चात सन्यास आश्रम। यदि इस प्रकार भगवान के वेदों के शास्त्र के बताए गए नियम के अनुसार हम हमारा जीवन व्यापन करते हैं तो जीवन सुखमय बीतता है। परंतु आज संसार में हम देखते हैं जितने भी गृहस्थ हैं सब लोग दुखी हैं। इसका कारण यही है कि अपना जीवन का अगला 25 साल जन्म से लेकर 25 साल वे ब्रह्मचारी आश्रम नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति जानते थे कि यदि हमारे पुत्र को का विवाह कराना है, गृहस्थ आश्रम में उसे रखना है, तो उसे तपस्या करानी चाहिए। देखिए, एक पिता का यह धर्म होता है। आज के पिता अपने पुत्र को तपस्या नहीं सिखाते हैं, भोग जरूर सिखाते हैं। आज के पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं, देखिए कैसे चम्मच हाथ में पकड़नी चाहिए, कैसे भोजन खाना चाहिए, कैसे पैसे कमाना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। वास्तव में पिता को अपने पुत्र को भोग सिखाने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये भोग जो है, कई जन्मों से यह जीव भोग करते आया है, उसे भोग भोगने सिखाने की आवश्यकता कभी नहीं होती। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को सिगरेट कैसे पीनी चाहिए सिखाना नहीं पड़ता है। कभी आपने देखा कि यहां पर एक ऐसे क्लासेस खुले हैं जहां पर सिगरेट पिलाना सिखाते हैं? कभी नहीं। यहां पर ऐसे क्लासेस खुले हैं जहां पर कैसे विवाह किया जाता है सिखाना पड़ता है? कभी नहीं। वहां पर एक ऐसे क्लासेस हैं कैसे भोजन किया जाता है ये सिखाया जाता है। ये भोजन करना, खाना पीना, भोग करना, ये किसी जीव को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हजारों हजारों जन्मों से वह यह करता आया है, वह ऑटोमेटिक करने लगता है। यदि सिखाने की आवश्यकता है तो त्याग, तपस्या। यदि एक पिता अपने पुत्र को त्याग की भावना सिखाता है, तपस्या सिखाता है, तो निश्चित जीवन में सुख ही सुख आ सकता है। नहीं तो जीवन में वे सुखी नहीं हो सकता है। त्याग होना चाहिए। रामायण हमें त्याग करना सिखाता है और महाभारत। अब देखिए, रामायण और महाभारत दो सुंदर ग्रंथ है जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम।
अब देखिए, महाभारत में दूसरे की संपत्ति हड़पने का विचार है। हस्तिनापुर की गादी दुर्योधन कहता है मेरी है, और सब लोग ये मेरी है, ये मेरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है। परंतु देखिए, रामायण में राम कहते हैं कि ये भरत की गादी है, और भरत कहते हैं ये राम की है। अवधपुरी का राज्य फुटबॉल की तरह, राम कहते हैं भरत को दीजिए, भरत कहते हैं राम को दीजिए। ये है त्याग की भावना, ये है तपस्या की भावना। परंतु आज संसार के लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि उसे त्याग नहीं सिखाया गया है। दक्ष प्रजापति अपने पुत्र को त्याग करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहते हैं पुत्रों, यदि गृहस्थ जीवन जीना है, तपस्या करो। तो हरियश्वर ने कहा, पिताजी हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं, परंतु कहां पर जाए, कहां जाकर तपस्या करें? नेशनल पार्क में जाए या हिमालय पे जाए, कहां जाए? तो पिता प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतिचिम प्रययुर दिशम, दक्ष प्रजापति ने कहा आप लोग प्रतिचिम पश्चिम दिशा में जाओ, वेस्टर्न कंट्री में जाओ। प्रतिचि का अर्थ होता है पश्चिम, और दिशम का अर्थ होता है दिशा। हे मेरे पुत्रों, आप पश्चिम दिशा की ओर जाओ। पश्चिम का अर्थ है वेस्टर्न। आज के माता पिता अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लंदन भेजते हैं, विदेश में अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ये दक्ष प्रजापति आज के माता पिता की तरह था, कहां पश्चिम दिशा में जाओ। परंतु उस समय पश्चिम दिशा भी बहुत पवित्र थी, आज की तरह नहीं थी। दक्ष प्रजापति के पुत्र पिता के आज्ञा का पालन करे करके दसों दस हजार तपस्या करने के लिए, 5 साल के बालक हैं, तपस्या करने के लिए निकल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहनन् मुनि सिद्ध निषेवितम्। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हरियश्व तत्र नारायण तीर्थम कहा के पश्चिम दिशा में जाओ। पश्चिम दिशा में तो गए, परंतु जैसे ही समुद्र आया तो वहां पर रुक गए। आज के लोग तो समुद्र को लांग करके विदेश में चले जाते हैं, विदेश नहीं गए, इसी देश में रहे और इसी देश में समुद्र के पास पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा तीर्थ है और उस तीर्थ में समुद्र के साथ सिंधु नदी का संगम होता है। वैसे तो भारत में जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी, ये सभी नदियां आखिर में समुद्र में मिलती हैं। तो ये सिंधु नदी जहां पर समुद्र में मिलती है वो जो जगह है बहुत परम पवित्र है। वो जगह पवित्र क्यों है? क्योंकि कहते हैं संगमो यत्र सुमहन मुनि सिद्ध निषेवितम। क्योंकि उस जगह पर बड़े बड़े मुनि तपस्या करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध तपस्या करते हैं। जहां पर बड़े बड़े लोग भगवान के भक्त होते हैं वो भूमि साधारण नहीं होती है। कहते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के भक्त तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। वे जहां पर खड़े रह जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। तो ऐसी तीर्थ भूमि में दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र पहुंचे हैं। प्रश्न होता है वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदुपस स्पर्श ना देव विनिर्धूत मलाशया धर्मे पारम हंस्येच प्रोत्पन्न मतयोप्युत। कहते वहां जाकर उस सिंधु नदी में उन्होंने स्नान किया, आचमन किया, सूर्य देव को जल तर्पण किया और कहते हैं जैसे ही उस नदी में स्नान किया, स्नान करते ही विनिर्धूत मलाशया उनके हृदय में जितने भी मल थे, जितनी गलत वासना थी वह सब शांत हो गई, पवित्र हो गए। ये तीर्थ और नदियों का प्रभाव होता है। यदि हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और उस नदी में स्नान करके धर्मे पारम हंस्ये च प्रोत्पन्न मतयोप्युत। वो बहुत बड़े सन्यासी की तरह उनके मन में विचार आने लगे और परमहंस धर्म में वे स्थित हो गए और उन्होंने कई वर्षों तक उस नदी में तपस्या की। तपस्या करके कई वर्ष जब बीत गए और जब उनकी तपस्या समाप्त हो गई तब सुखदेव गोस्वामी दुख के साथ कहते हैं, ते पिरे तप एवोग्रम पित्रो देशे न यंत्रता प्रजा विवृद्ध ये यत्तान देवर्षि तान ददर्श। जब उन्होंने तेपिरे तप एवोग्रम उग्र तपस्या, उग्र माने कठोर तपस्या, साधारण तपस्या नहीं, भूखे रहकर प्यासे रहकर और एक पांव पर खड़े रहकर बहुत भयंकर भयावह तपस्या संपन्न की, और तपस्या करके ऑलमोस्ट वे पवित्र हो चुके थे, परंतु फिर भी वे वापस घर पर आने लगे। घर पे आने का कारण क्या था? कहते हैं पित्रो देशेन यंत्रता, क्योंकि पिताजी का आदेश था और पिताजी के आदेश के कारण वे लाचार थे, मजबूर थे। पिताजी के इतने आज्ञाकारी पुत्र थे। दक्ष प्रजापति ने कहा था, देखो बालको तुम जा रहे हो, परंतु तपस्या करके वापस आना, और जैसे ही तुम वापस आओगे आप सब पुत्रों के लिए मैं कन्या ढूंढकर रखूंगा, 10,000 कन्या ढूंढकर रखूंगा, आप जैसे ही आओगे आपका विवाह करा दूंगा। ये 10,000 पुत्र अपने पिता के आदेश से वापस अपने घर पर जा रहे हैं। प्रजा विवृद्धये यत्तान देवर्षि तान ददर्श है। जब 10,000 पुत्र अपने घर पर वापस लौट रहे थे और लौटकर उसका विवाह होने वाला था, और विवाह के बाद बच्चे और फिर उस फजीयत में लगने वाले थे, परंतु उस समय भगवान के एक परम भक्त जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है देवर्षि, जिसको देव ऋषि कहा जाता है, जो देवताओं के भी ऋषि हैं, और केवल देवताओं के नहीं असुर के भी ऋषि हैं। एक ऐसे ऋषि मुनि हैं, एक भगवान के ऐसे भक्त हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और उतना ही आदर असुर भी करते हैं, वो है नारद मुनि। 2400 घंटा अपनी वीणा पर भगवान का नाम लेने वाले नारद जी, जो भगवान के परम भक्त हैं और यूथ को प्रीचिंग करने में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, एक्सपर्ट है। इतिहास में जितने भी यूथ भक्त हो गए सब के गुरु नारद मुनि हैं, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अब तो लौट उतरने वाला है, एक साथ 10,000। नारद मुनि तो घूमते रहते हैं भगवान का नाम लेते हुए, नारायण नारायण करते हुए, तो घूमते घूमते किसी ने नारद मुनि को खबर दे दी या नारद मुनि ने देख लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ददर्श, नारद मुनि ने ऊपर से देखा, अरे बाप रे बाप, ये 10,000 पुत्र इतने सुंदर इतने सुशील आगे आ चुका कि धर्मशाली, जिसमें शील बहुत सुंदर गुण था, उनमें नम्र थे, और ऐसे 10,000 पुत्र विवाह करने के लिए घर पर जा रहे हैं। नारद मुनि ने सोचा कि बेचारे विवाह करने योग्य नहीं है, और यदि ये लोग विवाह करेंगे तो जीवन का सारा सुख भूल जाएंगे और केवल इस संसार के बंधन में बंधकर दुनिया की फजीहत में फंस जाएंगे। ये सत्य बात है। प्रहलाद महाराज भी इस उपदेश को कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात हितवात्म पाथम गृह अंधकूमम वनम गतो यम हरिमाश्रयेत। इस संसार में सबकी बुद्धि जो है विचलित है, और इसका कारण यह है कि उनकी इंद्रियां वश में नहीं है। इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण विवाह करते हैं और बुद्धि उद्विग्न हो जाती है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। नारद मुनि ने सोचा कि इसे गृह अंधकूप में डालने से पड़ने से बचाना चाहिए। वास्तव में ये गृहस्थ जीवन जो है अंधे कुएं के समान है। शास्त्र कहता है, अंधा कुआं जानते हैं, शहरों में तो नहीं देखने मिलता है, गांवों में होता है, अंधा कुआं जिसे कहते हैं। सभी गांवों में 1, 2 या 3 कुएं अवश्य होते हैं, और जब वह कुएं में पानी खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, तो फिर वहां कोई आता नहीं है। और जब वहां कोई नहीं आते हैं तो बारिश की ऋतु में आगे उसके ऊपर घास उग जाते हैं उसके आजू बाजू में, और इतने बड़े बड़े घास हो जाते हैं कि उस कुएं को घेर लेते हैं। हरी हरी घास उग जाती है। उस समय कुछ भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी चराने वाले चराते रहते हैं जंगल में, तो भेड़ और बकरी देखते हैं कि वहां पर बहुत हरी हरी घास है और वहां जाएंगे, हरी घास खाएंगे, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। संसार में होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं अभी तो इतना आनंद नहीं है, विवाह करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। स्कूल में कोई लड़का होता है, यदि हम उसे पूछते हैं कि आप खुश हो, सुखी हो, तो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट कहता है क्या बात करे, चड्डी पहनकर रोज सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, चड्डी पहनकर जाओ स्कूल में और स्कूल का होमवर्क करो, ट्यूशन का होमवर्क करो, खेलने भी नहीं मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने भी नहीं मिलता है, जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा। 10 साल के बाद वह कॉलेज में आता है, फिर उसे पूछते हैं अब तो आप कॉलेज में आ गए, अब सुखी हो, तब कहते क्या बात करें, कॉलेज में तो आ गया हूं परंतु मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो गाड़ी भी नहीं है, अच्छे कपड़े और शूज नहीं है, और गाड़ी कपड़े शूज नहीं है तो कोई मेरे सामने देखता तक नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। तब फिर 5 साल तक बहुत मेहनत करता है, नौकरी लगती है और धीरे धीरे पैसे भी आने लगते हैं, परंतु उसका अनुभव होता है कि जिस दिन पैसे आए हैं और पैसे लेकर यदि वह घर पर जाता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, अच्छा अच्छा भोजन बना कर देते हैं, और यदि मंदी का समय चल रहा हो और कहीं किधर घाटा हो गया तो घर वाले भी गाली देते हैं, ठीक से भोजन भी नहीं देते हैं, तब वह सोचता है कि संसार में लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे धन से प्रेम करते हैं, जिस दिन मुझे प्रेम करने वाली कोई मिल जाएगी उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा। ताली मत बजाइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब तो शुरू होने वाली है। वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जिस दिन विवाह हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे वो भेड़ और बकरी सोचते हैं कि हरी हरी घास खाऊंगी तो सुखी हो जाऊंगी, और उस हरी घास को खाने के लोभ में वे बकरी का पूरा झुंड जो होता है, एक बकरी आगे आगे चलती है, और जैसे ही वह कुएं के ऊपर वह हरी घास के द्वारा पूरा लेयर बन जाता है, और जैसे ही वह हरी घास खाने के चक्कर में जाती है, हरी घास तो मुंह में आ जाती है परंतु जैसे ही हरी घास मुंह में आती है धड़ाम करके कुएं में गिर जाती है। आचार्य कहते हैं कि सिर के बल पटक जाती है, भेड़ और बकरी गिर जाते हैं, फिर उस अंधे कुएं में बेचारे फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में लोग विवाह करने के लोभ में, दूर से तो वो घास बहुत अच्छी दिखती है, लगता है कि विवाह करने पर बहुत आनंद आ जाएगा, परंतु जैसे ही विवाह करते हैं तो जैसे ये भेड़ बकरी कुएं में गिरते हैं ऐसे ही विवाह करने वाले गिर जाते हैं धड़ाम करके, इसे अंधा कुआ कहा जाता है। ठीक है, फिर भी इस अंधे कुएं में फंसे हुए लोगों को कभी कभी इस्कॉन वाले आते हैं, रस्सी फेंकते हैं, भाई बाहर निकलो, परंतु कुछ लोगों का दुर्भाग्य इतना तगड़ा होता है, रस्सी फेंकते हैं, पकड़ो, केवल पकड़ने की जरूरत है, कोई मेहनत तो बेचारे खींचने वाले को है, यहां सुनने वाले को क्या मेहनत है। मेहनत खींचने, केवल पकड़ने की आवश्यकता है, परंतु यह भी नहीं कर सकते। अंधा कुआ, इस अंधे कुएं में व्यक्ति फंस जाता है। यह गृहस्थ जीवन अंधे कुएं के समान है। नारद मुनि ने सोचा, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, यदि ये लोग विवाह नहीं करेंगे तो वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं, नहीं तो ये बंधन के ऊपर बंधन के ऊपर बंधन बांधते जाएंगे। नारद मुनि के हृदय में करुणा उमड़ी और करुणा के कारण नारद मुनि ऊपर से नीचे आए। वास्तव में नारद मुनि भगवान के परम भक्त, और जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, उसका स्वभाव होता है दूसरे के ऊपर कृपा करना। संत साधु भक्त महात्मा दूसरों का दुख नहीं देख सकते, ये साधु का स्वभाव होता है। वाणी वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया। संतों का स्वभाव होता है दूसरों के ऊपर कृपा करे। एक संत, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अपने हाथों से सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे। जल अर्पण कर रहे थे तो उस समय एक बिच्छू किनारे पर चलते चलते पानी में गिर गया, हाथ में वो बिच्छू आया। और संत ने सोचा बेचारा बिच्छू डूब रहा है, तो उसे लेकर किनारे पर छोड़ने के लिए चलने लगे। तो जैसे ही उस बिच्छू को हाथ में लेकर चलने लगे, तुरंत बिच्छू ने उस संत के हाथ में डंक मार दिया और संत का हाथ कांप गया और हाथ से बिच्छू छूट गया, पानी में गिर गया। लेकिन फिर से संत ने पानी में हाथ डाला और उस बिच्छू को कैसे भी करके ढूंढ कर बाहर निकाला। उसे लेकर किनारे पर जा रहे थे, फिर से बिच्छू ने डंक मारा, फिर से हाथ से छूट गया, गिर गया पानी में। 3-4 बार जब संत ने उस बिच्छू को हाथ में लिया, तब उस नदी के किनारे से कुछ लोग गुजर रहे थे। कहा, संत महात्मा जी, आप ये क्या कर रहे हो? हमने तो सोचा था कि ये लोग, आप लोग बहुत बुद्धिमान होते हो, परंतु आज पता चला आपकी बुद्धि। कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि ये बिच्छू है और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आप उसे छोड़ दो, उसे डूबने दो। ये बिच्छू अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, वे डंक मारेगा ही। तब उस संत ने इतना ही कहा कि हे मुसाफिर, इस प्रकृति का छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा कीड़ा यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं तो साधु हूं, संत हूं, महात्मा हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं? दुखी जीवों को सुखी करना, ये साधुओं का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव होता है। और संत के हृदय में करुणा होती है, और करुणा जब उमड़ती है तब दूसरों को प्रचार करते हैं। नारद मुनि के हृदय में करुणा उमड़ी और संसारिणाम करुण याह पुराण गुह्यम। उस करुणा के वश में होकर नारद मुनि घूमते घूमते दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र आधे जंगल का रास्ता तय कर लिए थे, घर पर पहुंचने ही वाले थे, नारद मुनि नारायण नारायण करके बीच रास्ते में खड़े रह गए। नारद मुनि ने कहा कि आप सब लोग कहां जा रहे हो? तो एक साथ 10,000 पुत्रों ने, बालकों ने कहा कि हम लोग पिताजी के घर पर जा रहे हैं। अच्छा, घर पे जाके क्या करना है? कहा कि पिताजी ने हमारे लिए बहुत अच्छी कन्या ढूंढ कर रखी है, विवाह करेंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि वास्तव में आप क्या चाहते हो? एक्चुअली आपकी इच्छा क्या है, ये बताओ। तब ये 10,000 पुत्रों ने कहा कि हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम लोग वास्तविक पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हो और घर पर जा रहे हो, और घर पे जाकर प्रजा की उत्पत्ति करोगे, विवाह करोगे, विवाह करने के बाद सृष्टि करोगे? कहा कि हां। नारद मुनि ने कहा कि आप लोग विवाह करना चाहते हो, सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हो। शास्त्रीय भाषा में प्रजा की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति को सृष्टि की उत्पत्ति करना कहते हैं, क्योंकि पुत्र भी एक सृष्टि माना जाता है। तब नारद मुनि ने ये 10,000 पुत्र को कहा कि आप सृष्टि करना चाहते हो, सृष्टि के बारे में कुछ जानते भी हो? 10,000 पुत्र ने कहा जानते हैं। अच्छा तो बताओ, नारद मुनि कहते हैं, उवाच चात हरेश्वा कथम स्त्रयक्ष वै प्रजा अदृष्टवांत भूयो युयम बालिशा बत पालका। हे बालको, आपकी बुद्धि बहुत कोमल है, आप सृष्टि करोगे, आप प्रजा की उत्पत्ति करोगे, विवाह करोगे, क्या सृष्टि के बारे में जानते भी हो? आप जहां पर रहते हो, जिस सृष्टि में रहते हो, इसका अंत जानते हो? देखिए, नारद मुनि बहुत अद्भुत प्रश्न पूछे। अद्वांष्टंतम भूयो युयम, इस भूमि का अंत आप जानते हो? आप इस पृथ्वी में रह रहे हो और इस पृथ्वी में सृष्टि करना चाहते हो, क्या तुमको पता है पृथ्वी का अंत कहां पर होता है? हरियश्व 10,000 पुत्र सोच में पड़ गए। नारद मुनि ने इतना ही नहीं और भी आगे कहा कि आप सृष्टि क्या करोगे, सृष्टि के बारे में ही नहीं जानते हो। नारद मुनि ने हरियश्व को 10 प्रश्न पूछे। कहते हैं कि यह 10 प्रश्न जो है, केवल 2 श्लोक में नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछे, और ये 10 प्रश्न सुनकर दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र स्वतंत्र हो गए। वास्तविक स्वतंत्र, हमारी तरह नहीं, केवल नारद मुनि के मुख से 10 प्रश्न सुनकर दक्ष प्रजापति के पुत्र स्वतंत्र हो गए। परंतु ये जो प्रश्न है, बहुत उठपटांग प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे हैं? कहते हैं एक पहेली के समान, हम जिसे पजल कहते हैं। दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है, वे समझ नहीं सकते हैं। और वास्तव में इस प्रश्न के ऊपर विचार किया जाए तो प्रश्न ही उसका उत्तर बनता है। ऐसे 10 प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण अद्भुत प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर विवाह करना चाहते हो, सृष्टि करना चाहते हो, तो आपने इस पृथ्वी का अंत देखा है क्या? आप जानते हो पृथ्वी का अंत कहां होता है? दूसरा प्रश्न, तथेक राष्ट्रम पुरुषम, कहते एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, क्या इस बात को जानते हो? बिलम च अदृष्ट निर्गमम, कहते इस संसार में और इस संसार से एक ऐसा बिल है, बिल का अर्थ जानते हैं? होल, जिसमें चूहे और सर्प रहते हैं। कहते एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जा तो सकता है परंतु बाहर नहीं निकल सकता है, इस चीज को जानते हो? बड़ी सृष्टि करने के लिए निकले हो, विवाह करना है, पुत्र पैदा करना है, संसार को चलाना है, बिजनेस करना है, सबसे पहले इस पृथ्वी के बारे में जानते हो? पृथ्वी के अंत के बारे में जानते हो? यहां पर एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, ये जानते हो? देखिए, प्रश्न सबको याद रहने चाहिए। चौथा प्रश्न पूछते हैं, बहु रूपाम स्त्रियम च, इस संसार में एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती है। अब स्त्रियों को तो देखा है, स्त्रियों के रूप को भी देखा है, सुबह साड़ी पहनती हैं, दोपहर को पंजाबी ड्रेस पहनती हैं, शाम को नाइटी पहनती हैं, ये तो रूप तो बदलते हुए देखते हैं। परंतु एक ऐसी स्त्री है जो प्रति सेकेंड अपना रूप बदलती है, ऐसी स्त्री कौन है भाई? बहु रूपाम स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती है। पुमांसम कुंशलिम पतिम, एक ऐसा पति है जो व्यभिचारिणी स्त्री अर्थात वेश्या को अपनी पत्नी मानता है। अब वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति तो धन होता है, परंतु एक ऐसा पति है जो वेश्या को अपनी पत्नी मानता है, क्या उस पति को जानते हो? फिर पूछे नदी, नदी उभयतो वाहम। इस संसार में एक ऐसी नदी है जो उभयत, उभय माने दो, वाहम माने बहना। इस संसार में एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। ये तो पहली बार सुना, नदी को देखा है परंतु एक ही डायरेक्शन में बहती है, परंतु ऐसी नदी जो दो डायरेक्शन में बहती है, क्या इस बात को जानते हो? पंच पंच अद्भुतम गृहम। और एक प्रश्न पूछे, कहते हैं गृहम एक ऐसा घर है जो पंच पंच अर्थात 25 तत्व से बना है। इस घर के बारे में जानते हो? हमारा घर बना है सीमेंट से, कंक्रीट से, ईंट से और पत्थर से, लेकिन एक ऐसा घर है जो 25 वस्तु से बना है, पंच पंच अद्भुतम गृहम, और वह अद्भुत है। इस घर के बारे में जानते हो? क्वचित हंसम चित्र कथम। एक ऐसा हंस है, एक ऐसा हंस है उसकी विचित्र कथा है, अद्भुत हंस जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उस हंस के बारे में जानते हो? शौरपयम स्वयं भ्रमिम। एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता है। हरियश्व ने कहा कभी नहीं, नारद मुनि ने कहा रुकाने की बात करता हूं, यह पूरा संसार भी उसे पकड़ ले फिर भी नहीं रुक सकता है, उस चक्र के बारे में जानते हो? निकले हो सृष्टि करने के लिए, स्वतंत्र बनने के लिए, क्या इस बात को जानते हो? और अंत में कहते हैं तुम्हारे वास्तविक पिता और पिता की वास्तविक आज्ञा को जानते हो? नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछा। मित्रों, ये 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न, ऐसी पहेली है, ऐसे पजल है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बस केवल नारद मुनि ये 10 चीज बताए, ये 10,000 पुत्र नारद मुनि के चरणों में गिर गए केवल 10 प्रश्न सुनकर, और ये 10,000 पुत्र नारद मुनि के मुख से ये 10 प्रश्न सुनने में 10 मिनट भी नहीं लगा। नारद मुनि ने जैसे ही ये 10 बातें बताई, ये 10,000 पुत्र स्वतंत्र हो गए और वास्तविक एब्सोल्यूट फ्रीडम प्राप्त करके वे विचरण करने लगे, सुखी हो गए। परंतु वे तो बहुत बुद्धिमान थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे तो जन्म से ही बुद्धिमान थे, 10,000 पुत्र केवल प्रश्न में ही उत्तर समझ गए, परंतु हम तो ठीक से प्रश्न भी नहीं समझे हैं। और ये प्रश्न और उसके उत्तर को यदि हम समझ जाएंगे तो वास्तव में हम भी स्वतंत्रता हमारी मुट्ठी में होगी। आइए फिर से मैं प्रश्न गिना देता हूं, आप याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि इस पृथ्वी का अंत कहां पर है, इस पृथ्वी का एंड कहां है, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तथैक राष्ट्रम पुरुषम। एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो ढूंढना होगा सोम मंगल ग्रह कौन सा ग्रह होगा, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक ही पुरुष रहता है। बिलम च अदृष्ट निर्गमम। एक ऐसा बिल है, एक ऐसा हॉल है जिसमें व्यक्ति चला तो जाता है परंतु वापस बाहर नहीं निकल सकता है। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बहु रूपाम स्त्रियम। एक ऐसी स्त्री है जो प्रति सेकंड में अपना रूप बदलती है। पांचवा प्रश्न है, पुमांसम पुंशली पतिम। एक ऐसा पति है जो व्यभिचारिणी स्त्री को अपनी पत्नी मानता है। छठा प्रश्न है, नदी तो नदीम उभयतः वाहाम, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। सातवां प्रश्न है, पंच पंच अद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है जो 25 वस्तु से बना है। आठवां प्रश्न है, क्वचित हंस चित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है, विचित्र हंस है। नौवां प्रश्न है, क्षौर प्यव्यम स्वयं भ्रमिम, एक ऐसा चक्र है जो स्वयं घूमता है और उसे कोई नहीं रुका सकता, संसार की सारी ताकत मिलाकर भी उसे एक सेकंड भी नहीं रुका सकता। और दसवां प्रश्न, कथम स्वपितु आदेशम विद्वांसो विपश्चित अनुरूपम विज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ। सातवां प्रश्न, आप अपने वास्तविक पिता को जानते हो और अपने पिता की वास्तविक आज्ञा को जानते हो। ये दसवां प्रश्न, ये 10 प्रश्न सुने और सुनकर वे तो इतने बुद्धिमान थे, इतने पावरफुल माइंड के थे, तुरंत समझ में आ गया, अरे बाप रे बाप, ऐसा भी होता है। सृष्टि का अंत, एक ही पुरुष, दो ओर बहने वाली नदी, सभी प्रश्नों का उत्तर तुरंत उसे मिल गया। और जैसे ही प्रश्न का उत्तर वे जान गए, दसवां उत्तर जब जाने, सभी स्वतंत्र हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि हम भी इस प्रश्न के बारे में जान लेंगे और इसका उत्तर यदि हम समझ लेंगे तो हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। निशम्याथ हर्यश्वा औतपत्तिक मनीषया वाच कुटम तु देवर्षे स्वयं विमृश्य शूरधिया। वाचम कुटम, वाचम कुटम का अर्थ होता है पजल, पहेली। इस 10वें श्लोक में कहते हैं कि नारद मुनि की इस पहेली को हरियश्व समझ गए और समझकर तुरंत वे मुक्त हो गए, विशेष रूप से स्वतंत्र हो गए। परंतु मित्रों, हमें तो यह समझना है, यह जानना है कि इस प्रश्न के उत्तर क्या है, क्योंकि जब तक इसके उत्तर नहीं पता चलेंगे तब तक हम भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न आज हम प्रारंभ करते हैं। याद है पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न ही याद नहीं है, जवाब क्या देंगे? क्या? यस, इस पृथ्वी का अंत कहां पर है, एंड क्या है, कोई जानता है? सबसे पहले ये हम पूछ रहे, नारद मुनि ने यह पहेली पूछी कि इस पृथ्वी का अंत कहां होता है, इसका उत्तर किसी को पता है? लेकिन फिर भी सृष्टि करने बैठ गए हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। हरियश्व ने इस प्रश्न को इस प्रकार से समझा, हमें तो यही जानना है कि हरियश्व ने, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने इस प्रश्न को कैसे समझा, इसके उत्तर को कैसे समझा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहला प्रश्न हरियश्व ने अपने दिमाग में फिट कर दिया, कैसे समझा? कहते हैं, भू क्षेत्रम जीव संज्ञम यत अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत कर्म भीर भवेत। यह है उत्तर, परंतु फिर भी समझ में नहीं आएगा। संस्कृत में इस सृष्टि का अंत कहां पर है? कहते हैं जीव संज्ञम भू क्षेत्रम। वास्तव में नारद मुनि ने एक छिपा हुआ प्रश्न पूछा, पहली पूछी, और नारद मुनि जिसको भूमि कह रहे हैं, वास्तव में वह भूमि और कोई नहीं, वह भूमि एक क्षेत्र है, भू क्षेत्रम। और वह क्षेत्र कौन है? कहते हैं जीव संज्ञम, ये हमारा शरीर ही एक क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर कुछ कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, तो वास्तव में इस शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, इसलिए इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, भू क्षेत्रम जीव संज्ञम, जीव अर्थात यह लिंग देह, यह शरीर जो हमें दिख रहा है, यह शरीर ही एक क्षेत्र है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो यह शरीर एक क्षेत्र है, और यह शरीर क्या है, यत अनादि निज बंधनम। अब यहां पर प्रश्न अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। नारद मुनि ने यह पूछा था कि इस सृष्टि का अंत कहां पर होता है, तो हरीश्वर ने पहली बात यह समझ ली कि यह सृष्टि, यह पृथ्वी और कुछ नहीं, यह पृथ्वी एक क्षेत्र कह रहे हैं, और यह पृथ्वी हमारा शरीर ही एक क्षेत्र है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्लियर करनी थी, इस शरीर का अंत कहां होता है। वास्तव में इस शरीर का अंत जब तक हम नहीं जानते हैं, तब तक हम स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मृत्यु, हम मर जाते हैं तो शरीर का अंत हो जाता है, मरने के बाद तो शुरू होता है। मरने से ही शरीर का अंत नहीं होता है। यह शरीर मर जाता है तो उसके कर्म स्वरूप उसे दूसरा जन्म मिलता है, फिर तीसरा जन्म, चौथा, पांचवा, 84 लाख की योनि में यह शरीर घूमते रहता है, घूमते रहता है। वास्तव में हम सब लोग एक यात्रा में है, शरीर यात्रा अपि, यह शरीर यात्रा में है, और ये जो है हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म है। वैसे इस शरीर के 84 लाख प्लेटफॉर्म है, और 84 लाख प्लेटफॉर्म पर यह खड़ा रहता है, परंतु इसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, इस शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस मनुष्य जीवन नहीं, और गधा, कुत्ता, बैल, ये भी इसका डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है। ये शरीर का अंत, ये शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस जब तक हम नहीं जानेंगे, ये शरीर का अंत कहां होता है जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना होगा कि ये शरीर का अंत, तो सबसे पहले तो शरीर के बारे में हमें जानना होगा कि ये जो शरीर है, ये शरीर पंच महाभूत से बनता है, और ये शरीर ही वास्तव में यत अनादि निज बंधनम, ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। हरेशवन समझ गए कि इस संसार में हम लोग स्वतंत्र नहीं है, उसका कारण क्या है, यह शरीर ही सबसे बड़ा बंधन, नीच बंधनम, सबसे बड़ा बंधन। कहते हैं यह बंधन कब से लगा है, डेट है, तब हरीश्वर कहते हैं यत अनादि, अनादि बहुत समय पहले से यह बंधन हमारे ऊपर आ चुका है। तो स्वाभाविक एक प्रश्न होता है कि यह शरीर यदि बंधन है तो हम कौन है। वास्तव में हम ये शरीर नहीं है। शास्त्र का सबसे पहला सिद्धांत यहां पर प्रकट होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। सबसे पहले इस बात को जानना होगा, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। कभी कभी जब हम इस प्रकार से कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और प्रायः संसार में लोग इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और कहते हैं ये शरीर है तब तक सब कुछ है, शरीर मर जाने के बाद सब कुछ नाश हो जाता है। परंतु ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वास्तव में हम जो है इस शरीर के अंदर रहने वाले हैं। ये शरीर अलग है और हम माने आत्मा अलग है, हम जो है आत्मा है और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। 100 साल के लिए यह शरीर मिला है, फिर हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे, और हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको जानने के कई सारे प्रमाण है, सबूत है, और सबसे पहला सबूत है, अब देखिए, यदि आपको जानना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस कीजिए कि हम जब देखते हैं, जब हम किसी को देखते हैं तो वह कौन देखता है। मान लीजिए मैं आपको पूछूं, आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे कौन देखता है, तो आप कहेंगे ये आंख के द्वारा मैं देखता हूं। अच्छा ये शब्द सुन रहे हो, कौन सुनता है, तो आप कहोगे कान सुनता है। आंख देखती है और कान सुनता है, प्रायः सब लोग यही उत्तर देंगे। यदि यह आंख देखती है और कान सुनता है तो मरा हुआ व्यक्ति की आंख भी होती है और कान भी होता है, उल्टा हमसे बड़ी बड़ी आंखें होते हो जाती हैं, फट जाती हैं आंख। यदि हम यह विश्वास रखते हैं कि हम ये आंख देखती है और ये कान सुनता है तो मरे हुए व्यक्ति की भी आंख होती है, मरे हुए व्यक्ति का भी कान होता है, तो क्या वे नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं? मरे हुए व्यक्ति के पास आंख भी होती है और कान भी होता है, फिर भी वे न तो सुन सकते हैं न तो देख सकते हैं। तो प्रश्न होता है तो सुनने और देखने वाला कौन है? समझ में आ रहा है इस बात? मान लो यदि हम गर्व से कहें हम आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं, तो जब व्यक्ति मर जाता है तो तब भी उसकी आंख होती है, तब भी उनके कान होते हैं, फिर भी वे न तो देख सकते हैं न तो सुन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है, वास्तव में इसके अंदर रहने वाला आत्मा देखता है और आत्मा ही सुनता है। और जब वह आत्मा यहां से निकल जाता है तो सुनना भी बंद और देखना भी बंद हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है, प्रूव होता है, साबित होता है कि शरीर और आत्मा अलग है और हम आत्मा हैं। आत्मा को जानने का दूसरा प्रमाण जिसे कॉमन सेंस कहा जाता है, कॉमन सेंस के द्वारा, मान लीजिए कोई मर गया है, किसी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो पेपर में लिखते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं, फिर भले नरक में गए हो लेकिन लिखते हैं। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, पापी हो, फिर भी लिखते हैं कि हमारे पिताजी चले गए, वे चल बसे। कितना भी बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, पापी भी हो तो वह भी अपने मुख से कहते हैं। और हम जब जाएंगे उनके पास तो रोते हैं, हम पूछेंगे क्यों रोते हो, तो कहते हैं वे चल बसे, वे चले गए। अरे जिसके लिए रो रहे हो तो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, तुम जिसके लिए रो रहे हो वो चले गए तो सामने है, वही दो हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, पेट है, सब कुछ है, फिर भी क्यों रो रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि वे चले गए? क्या चला गया? आप वजन करके भी देख लो कि आप कहते हो जब था तब भी उतना वजन है और अभी भी इतना वजन है, वजन भी कम नहीं हुआ, आंख भी वैसी है, हाथ भी है, पांव, शरीर पूरा आपके सामने लेटा हुआ है, फिर भी आप कहते हो कि वे चल बसे, वे चले गए। तो जो चला गया है वह कौन है? वो है आत्मा, और वास्तव में वही हम है। जब तक हम यानी कि आत्मा यह शरीर में रहता है तब तक शरीर काम करता है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर वैसे का वैसे ही रहता है। यह है आत्मा, यह दूसरा प्रमाण। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं कॉन्शियसनेस के द्वारा। आत्मा को जानने का तीसरा प्रमाण कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना। चेतना के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे आप मान लीजिए चेयर के ऊपर बैठे हो तो आप दो घंटा चेयर के ऊपर बैठोगे फिर भी वह चेयर ऐसा नहीं कहेगी कि भाई खड़ा हो जा मैं थक गई हूं। लेकिन यदि आप अपने मित्र के गोद में बैठोगे तो 10 मिनट में कहेगा अरे यार खड़ा हो जा थक गया हूं। आप देखिए चेयर के ऊपर आप 2 घंटा बैठे फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, और मित्र के गोद में 10 मिनट में भी वो थक जाता है। मान लीजिए आप किसी फुटबॉल को जोर से लात मारते हो तो फुटबॉल कहीं दूर जाकर गिरता है, यदि वही इतनी जोर से लात अपने फ्रेंड को मारोगे तो है? वही लात रिवर्स आएगी। क्यों? वो फुटबॉल में और आपके मित्र में क्या अंतर है? वो कुर्सी और आपके मित्र में क्या अंतर है? अंतर यही है कि उस फुटबॉल में चेतना नहीं है, और चेतना नहीं होने के कारण उसमें सुख और दुख का अनुभव नहीं है। उस कुर्सी में चेतना नहीं है, और चेतना नहीं होने के कारण सुख दुख का अनुभव नहीं है। परंतु जो मित्र है उसमें चेतना है, उस चेतना के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। तो यदि किसी व्यक्ति में चेतना है तो ये चेतना क्या है? ये चेतना आत्मा का प्रकाश है, और चेतना के द्वारा हम यह साबित कर सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो इस प्रकार कई प्रमाणों के द्वारा हम साबित कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। मान लीजिए आप अपने इस कुर्ते को पकड़कर पूछिए ये कुर्ता किसका है, तो हम कहेंगे ये मेरा है। हम यदि कहते हैं ये कुर्ता मेरा है तो इसका अर्थ हुआ कि कुर्ता और मैं दोनों अलग अलग है। हम यदि कहेंगे ये हाथ यदि मेरा है तो हाथ और मैं दोनों अलग अलग है। और यदि कहें ये शरीर किसका है तो हम कहते हैं शरीर मेरा है, तो इसका अर्थ हुआ मैं और शरीर दोनों अलग अलग है। तो मैं बोलने वाला कौन है? तो वास्तव में मैं बोलने वाला ही आत्मा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके द्वारा ये साबित किया जाता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और भगवद गीता में सर्वप्रथम भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपना स्वरूप जानना चाहिए। देखिए इस संसार में सब लोग दुखी हैं, उसका कारण यही है कि हम हमारी पहचान भूल गए हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं, परंतु हम इस ज्ञान को छोड़कर अपने आप को और ही कुछ मानते हैं, और जैसे हम हमारी पहचान भूल जाते हैं तो फिर दुखी होते ही हैं। जैसे मैं प्रायः दृष्टांत देता हूं, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और अचानक अपनी पहचान भूल गए और लेडीज डिब्बे में चढ़ गए, कोई जेंट्स लेडीज डिब्बे में चढ़ गया अपनी पहचान भूल गया तो फिर क्या होगा? पुलिस के डंडे पड़ेंगे। अपनी पहचान यदि भूल जाते हैं तो दुख मिलता है, और वास्तव में हमारी अपनी पहचान है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और इसी पहचान के भूलने के कारण हम सब लोग गलत गलत परिश्रम में लगे हैं। सब लोग सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए सैकड़ों प्रयास करते हैं, एक से एक प्रयास। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं वाटर किंगडम में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं होटल में जाऊंगा भोजन करूंगा सुखी हो जाऊंगा। परंतु वास्तव में ये जितने भी हम सुख के कार्य हैं ये सब शरीर के लिए कर रहे हैं। भोजन शरीर को देते हैं, फिल्म इस आंख को दिखाते हैं, ये जितने भी कार्य इस संसार में हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं। वास्तव में हम जो है आत्मा, इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। और आप इस शरीर के लिए कितना भी परिश्रम करो, कितना भी मेहनत करो, जब तक आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं हो पाओगे। वास्तविक सुखी होना है तो आत्मा के लिए कार्य करना है। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे एक बहुत सुंदर पिंजरा हो और पिंजरे में तोते को बंद करके रखा हो, और तोता यदि रोने लगे तो उसका मालिक सोचे कि तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि पिंजरा जो है मैला हो गया है। पिंजरा को बहुत सुंदर साफ करे लेकिन फिर भी वो तोता रोने लगे, तब वो मालिक सोचता है कि अरे बाप रे बाप, लगता है लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, चांदी के पिंजरे में तोते को रखते हैं फिर भी वो तोता रोता है। तो वो सोचता है यदि गोल्ड सोने के पिंजरे में रखेंगे तो ये तोता सुखी हो जाएगा, सोने के पिंजरे में रखते हैं फिर भी तोता रोता रहता है, तो सोचते डायमंड के पिंजरे में रखेंगे तब सुखी हो जाएगा, लेकिन फिर भी तोता रोता रहता है। क्यों? जब तक उस तोते को भोजन नहीं दिया जाएगा और बाहर कैसा भी पिंजरा बदलते रहो, जब तक तोते के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के लिए आप कुछ भी करते रहो, आत्मा रूपी तोते के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो इस आत्मा के लिए प्रयास करना होगा। और आत्मा वास्तव में सुखी है, आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, जैसे परमात्मा सच्चिद आनंद है वैसे आत्मा भी सच्चिद आनंद है, परमात्मा का अंश है। परंतु सच्चिद आनंद मई आत्मा इस शरीर के बंधन में जब फंस जाता है तब वे दुखी होता है। देखिए यहां पर लिखा है यत अनादि निज बंधनम, ये जो आत्मा है इस शरीर के बंधन में फंसा हुआ है यही दुख का कारण है। नहीं तो आत्मा आनंदमय है, आत्मा को किसी सुख की जरूरत नहीं है, आत्मा से ही सुख निकलता है। परंतु क्या करे बिचारा, इस शरीर के बंधन में बंध गया है। और हम आत्मा के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा दुख यह शरीर ही है। देहम निजम भारवत भूक्षेत्र जीव संज्ञम यत अनादि निज बंधनम अदृष्टवा तस्य निर्वाणम। हरेश्वर ने मन ही मन में सोचा, अरे बाप रे बाप, हम तो इस शरीर में फंसे हैं, तो सबसे पहले इस शरीर से हम निर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे, इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। वास्तव में यह देह यह शरीर ही दुख का कारण है। महात्मा बहुत सुंदर कथा कहते हैं किस प्रकार से यह शरीर दुख का कारण है। एक बहुत बड़े राजा थे और राजा की कुछ तबीयत बिगड़ गई, बुखार आ गया, एक से एक वेद आए और बहुत बहुत इलाज करने के बाद भी राजा ठीक नहीं हुए। तब इस भारत के जो बहुत बड़े वेद थे उनको बुलाया गया और वेद ने राजा की नाड़ी और हाथ पकड़ा और कहा इसको कुछ नहीं है। मंत्री ने कहा राजा को कुछ नहीं है, नहीं ये तुरंत ठीक हो सकते हैं परंतु एक काम करना पड़ेगा। राजा का बुखार राजा का दुख तब दूर हो सकता है जब किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता इसको पहनाया जाए। राजा को यदि सुखी करना है तो किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता राजा को पहनाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं। मंत्री ने सभी सैनिकों को बुलाया, अनाउंसमेंट कर दिया, चारों दिशा में सब लोग छा जाओ और सुखी व्यक्ति को ढूंढो और उसके कुर्ते को लेकर आओ। मंत्री ने सभी सैनिकों को भेजा, दो तीन दिन हो गए परंतु कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। मंत्री बिचारा दुखी हुआ। तब मंत्री ने सोचा कि चलो मैं ही स्वयं जाकर देखूं कि हमारे राज्य में कोई सुखी नहीं है। मंत्री घोड़े के ऊपर सवार होकर पूरे देश में घुमा, कोई सुखी नहीं मिला। अंत में नर्वस होकर जब वापस लौट रहा था तब उसने देखा कि एक मछुआरा नाव के ऊपर बैठकर अपना रुमाल घुमा घुमा कर बहुत सुंदर गाने गा रहा था। मंत्री ने सोचा ये सुखी व्यक्ति है, बाकी जितने भी हैं सब लोग मुंह लटका कर बैठे हैं, इतना टेंशन लेकर बैठे हैं जैसे मनमोहन सिंह ने सारा भार इसी व्यक्ति को दे दिया, इतने चिंतित हैं। ये जो व्यक्ति है, मछुआरे जो होते हैं छोटा सा रुमाल पहनकर घूमते हैं, और उस मछुआरे को देखा कि गाना गा रहा था, और जो सुखी होते हैं वो गाना गाते हैं। मंत्री गया उसके पास और कहा कि मैंने पूरे देश में देखा, कोई सुखी नहीं मिला, आप मुझे सुखी दिख रहे हो, क्या आप सुखी हो? कहा आई एम हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा, आपको कोई चिंता नहीं है? कोई चिंता नहीं है। आपको कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं है। वास्तव में आप सुखी हो? हां मैं सुखी हूं। मंत्री ने कहा मेरा काम बन गया। कहा कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, अब एक काम करो, आपका कुर्ता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे राजा को पहनाना है। तब उस मछुआरे ने कहा कुर्ता नहीं है, इसीलिए तो सुखी हूं। इस संसार में जितने कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। कथा तो बहुत संक्षिप्त में है, परंतु वास्तव में ये कुर्ता और कोई नहीं, ये कुर्ता हमारा शरीर है। और जिसके पास शरीर है सब लोग दुखी हैं। शरीर अविद्या जाल, ये शरीर अविद्या का, दुख का एक खजाना है। ये शरीर दुख का खजाना, और इतना बेकार शरीर, वास्तव में न जाने इस शरीर को हम लोग क्यों इतना प्रेम करते हैं। इस शरीर में गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। क्या है इस शरीर में? मल, मूत्र, बाल, हड्डी, मज्जा, चर्बी, कफ, वात, पित्त। यदि शरीर के अंदर की वस्तु को अलग अलग करके सामने रख दी जाए, कोई देखने की बात तो दूर रही, थूकेगा तक नहीं। तो ब्रह्मा जी ने चमड़े में डाल दिया है तो उसे कहते हैं बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। क्या है इस शरीर में? वास्तव में ये शरीर अविद्या का जाल है, दुखों का खजाना है। कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा वस्त्र इस शरीर पर डालो, शाम को गंदा हो जाता है। कितना भी अच्छी वस्तु इस मुख में डालो, दुकान में होती है तो डिस्प्ले में होती है, कितनी अच्छी दिखती है, मिठाई, बर्फी, जैसे ही मुख में जाते हैं सुबह उसका रूप ही बदल जाता है। ये शरीर के स्पर्श में जो भी आता है सब बिगड़ जाता है। शरीर अविद्या का जाल है, फिर भी लोग इस शरीर से इतना प्रेम। वास्तव में यत अनादि निज बंधनम, जो शरीर बंधन का कारण है, जो शरीर दुख का कारण है, संसार के लोग उस शरीर से प्रेम करके बैठे हैं, कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे? जो दुख देने के लिए बनाया गया है उसे प्रेम करते हैं और उसी को चूमते हैं। राजा जनक की सभा में एक समय एक से एक राजा महाराजा राज राजेश्वर की सभा थी, और उस सभा में अष्टवक्र ऋषि मुनि वहां पर आए। आप लोग नाम सुने होंगे अष्टवक्र, ये ऋषि मुनि कुछ अद्भुत थे। ये ऋषि मुनि आठों अंग से टेढ़े थे, कोई अंग सीधा नहीं था, और दिखने में बिल्कुल बहुत उठपटांग लगते थे। तो ऐसे अष्टावक्र ऋषि राजा जनक की सभा में आए, सभी राजा महाराजा बैठे थे, और अष्टावक्र ऋषि को देखकर ये सभी राजा महाराजा हंसने लगे। कुरूप था, रूप ठीक नहीं था, और आठों अंग से टेढ़े थे। सभी राजा महाराजा हंसने लगे, और राजा महाराजाओं को देखकर अष्टावक्र ऋषि और दुगुना हंसने लगे। तो राजा महाराजा सोचने लगे, हम तो हंस रहे हैं, इस पर ये किस पर हंस रहा है? ये भी सोचने की बात है, हम तो उसको देखकर हंस रहे हैं, तो वो किसको देखकर हंस रहा है? सभी राजा महाराजा शांत हुए, पूछा आप क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ऋषि ने इतना ही कहा कि मैं तो सुना था कि राजा जनक की सभा में एक से एक राजा महाराजा आए हैं। मैं सुना कि जनक की सभा में राजा महाराजा आए हैं, परंतु यहां आकर देखा तो सब लोग मोची बैठे हुए हैं, चमार बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग केवल चमड़ी को देख रहे हो, इस चमड़ी के अंदर, इस देह के अंदर रहने वाले आत्मा को नहीं देख रहे हो। आप इस शरीर को देखकर हंस रहे हो। वास्तव में यह शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ समय के लिए मिला है, जो नित्य सनातन, जो हमारा स्वरूप है, जो हम है आत्मा, उसे आप नहीं देख रहे हो। इस संसार में सबकी यही हालत है। बस चमड़े का बिजनेस खोलकर बैठे हैं, शरीर को देखते हैं और शरीर को देखकर उसी के साथ घूमते हैं, चूसते हैं और उसी के साथ पड़े रहते हैं। जो निज अनादि बंधनम, जो शरीर ही बंधन का कारण है, जो शरीर दुख का कारण है, उसी शरीर से प्रेम करते हैं, कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे? तो ये शरीर सबसे बड़ा बंधन है। हरियशो इस बात को समझ गए, उसे बताना नहीं पड़ा, परंतु दुर्भाग्य यहां पर तो बताने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। वे तो केवल बस एक शब्द में समझ गए कि इस पृथ्वी के अंत को जानते हो। यहां तो बताया गया कि पृथ्वी माने शरीर, और यत अनादि निज बंधनम, और ये शरीर ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। तो इस प्रश्न को और यदि क्लियर किया जाए, क्योंकि प्रश्न ये था कि शरीर का अंत कहां पर होता है। अब हमारा भी यह प्रश्न है कि यह शरीर बंधन है, यदि यह शरीर दुख का कारण है तो इसका अंत कहां पर होगा? मरने से इसका अंत कभी नहीं होता है। यदि यह शरीर मान लीजिए मर भी जाए तो तुरंत दूसरा शरीर मिलता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी तथानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे यह आत्मा अर्थात हम ये पुराने शरीर को त्याग कर तुरंत नया शरीर धारण कर लेते हैं। कर्म के अनुसार मनुष्य देह छोड़कर कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी बैल 84 लाख की योनि में भटकते हैं, फिर से मनुष्य बनते हैं। इस प्रकार से ये शरीर बदलते रहते हैं, एक के बाद एक शरीर। जो शरीर बंधन का कारण है, दुख का कारण है, वही हम प्राप्त करते रहते हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि इसका अंत भी जानते हो, कहां होता है, कि इसमें ही फंसे रहना है, इसमें ही फंसे रहना है कि इसका अंत भी आपको प्राप्त करना है? तो कहते हैं अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम, वास्तव में यह शरीर का अंत, यह शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस कहां पर है? कहते हैं यह शरीर का डेस्टिनेशन प्लेस भगवान के धाम में है। जब तक जीव भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होता है, तब तक यह शरीर बदलते रहेगा, तब तक 84 लाख प्रकार के शरीर बदलते जाएगा, इस चक्कर में घूमता जाएगा। यदि उसको इस शरीर को त्याग कर, इस बंधन को त्याग कर वास्तव में स्वतंत्र होना है, वास्तव में सुखी होना है, अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचना है, तो वह डेस्टिनेशन प्लेस है भगवान का धाम। तो प्रश्न था कि इस शरीर का अंत कहां पर होता है, तो वास्तव में इस शरीर का अंत भगवान का धाम है, लास्ट स्टॉप हमारा। तब हरियश्व मन ही मन में सोचे, अरे बाप रे बाप, भगवान का धाम ही हमारा अंतिम स्टेज, अंतिम स्टॉप है, और जब तक इस भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तब तक यह शरीर बदलते रहने से कोई फायदा नहीं है। तो इस शरीर के बंधन में डालने वाले कर्म करके क्या लाभ? वास्तव में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे यह शरीर त्याग कर हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए, हम हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पर चले जाए। वास्तव में आप देखिए, शरीर यात्रा अभी हम लोग यात्रा में हैं, ये मनुष्य जीवन हमारा डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, और वास्तव में ये पृथ्वी हमारी रहने की जगह नहीं है। और आप देखिए, जो जीव यात्रा में रहता है वो बहुत दुखी होता है, दुखी रहता है। मान लीजिए आपको यहां से कहीं दिल्ली जाना है, और उसमें अच्छी ट्रेन मिल गई, अच्छा शरीर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो देहरादून या फिरोजपुर जनता मिल गई। हमारा शरीर ऐसा ही है, ठीक से काम नहीं करता है, उसमें गर्मी का सीजन है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, लू लगती है, उसमें भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये यात्रा में व्यक्ति ही दुखी होता है, और जब व्यक्ति यात्रा में होता है तब मन में यही सोचता है कि कब घर मिले। आप मानो कश्मीर भी घूमने चले गए हो, लेकिन फिर भी 2-5 दिन के बाद यही विचार आता है कि घर पे कब पहुंचेंगे, होता है कि नहीं? आप कितनी भी अच्छी जगह पर जाओ, परंतु कुछ दिन के बाद यही होता है कि घर पे कब पहुंचेंगे, क्योंकि घर घर होता है, हमारा अपना डेस्टिनेशन प्लेस होता है, क्योंकि उसमें ही सुख मिलता है। तो वास्तव में सुख हमारे वास्तविक घर अर्थात भगवान के धाम में है, और ये जो है हम सब यात्रा में है। तो हम इस यात्रा को त्याग कर अर्थात इसी शरीर से ऐसे कार्य करें जिससे हमारा डेस्टिनेशन प्लेस डायरेक्ट भगवान का धाम हो। परंतु हमारी यात्रा बिल्कुल उल्टी चल रही है। तो इस शरीर का अंत भगवान के धाम में है, और जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक एक के बाद एक शरीर बदलते रहेंगे। तो ऐसे कर्म करने से क्या फायदा जिससे यह शरीर बदलते रहने पड़ते हैं। ऐसे कर्म होना चाहिए, ऐसा कर्म ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे यह सभी शरीर से मुक्ति प्राप्त करके भगवान का धाम हमें मिल जाए। तो नारद मुनि का पहला प्रश्न, इस शरीर का सृष्टि का अंत जानते हो? हरियश्व समझ गए कि वास्तव में यह शरीर ही एक क्षेत्र है, और यह शरीर अनादि निज बंधनम, शरीर ही बंधन का कारण है। और यह शरीर मानो ये तो मनुष्य का शरीर है, ठीक है, मनुष्य का शरीर तो बहुत अच्छा है, यदि ये चला गया तो फिर कौन सा मिलेगा, कोई भरोसा नहीं, और वह तो बहुत बड़ा बंधन होगा। ऐसे शरीर रूपी बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करें। और भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म में हमको लग जाना चाहिए। ये सत्कर्म क्या है? कहते हैं ये सत्कर्म भगवान का नाम और भगवान की कथा। हरे कृष्णा कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
तो इस प्रकार एक प्रश्न का उत्तर आज हमें प्राप्त हुआ। नारद मुनि का दूसरा प्रश्न, तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, तो वो राष्ट्र कौन और वो पुरुष कौन? और फिर एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है। तो इस प्रकार जब सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा, वास्तव में स्वतंत्रता की चाबी हमारे हाथ में लग जाएगी। तो आप सब मित्रों से निवेदन है कि आप यहां पर आइए और नारद मुनि के इस 10 प्रश्न के उत्तर आप सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, निश्चित आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे, गारंटी हम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे।
तो यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। माइक दीजिए, 2-3 माइक यहाँ पर पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, अंतर में से किया गया अभिनंदन आपको प्राप्त हो। आपकी अमृतवाणी सुनकर के मुझे बहुत ही आनंद आया, और बाकी के दिनों में भी मैं उस आनंद का अनुभव करके स्वतंत्र होना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, दरअसल ये प्रश्न नहीं है, मेरी दुविधा है कि लोग कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है, जैसे सोने का भी एक अंश होता है, लेकिन वो सोना ही होता है, उसकी कीमत भी उतनी होती है। ये अलग बात है कि जैसे वो 10 ग्राम का है तो उसकी कीमत उतने रुपए से हो सकती है, लेकिन अगर वो 1 ग्राम है तो सोने का मतलब है कि वो 1,000 का है, वो 10 ग्राम का होगा तो 10,000 का हो जाएगा। वैसे ही जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से जीव में भी सच्चित आनंद होना चाहिए, तो क्यों वो केवल काम क्रोध लोभ मोह से कैसे लग गए? और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें वापस उस धाम में जाना चाहिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वापस वहां जाना है तो हम वहां से आए हैं, तो वहां से अगर आए हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार अगर हम जब जाएंगे तो फिर ना वो हो सकता है हमें वापस आना पड़े। कृपया करके इस दुविधा को आप कृपा करके इसे बताइए।
बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। सबसे पहले प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जैसे सोने की कीमत जो होती है और उस सोने के जो अंश की कीमत होते हैं उसी के प्रकार होती है, उस दोनों में एक ही गुण होते हैं, वैसे ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा भगवान सत्चित आनंद है, तो आत्मा भी सच्चित आनंद है। तो भगवान तो कभी माया में नहीं फंसते हैं, तो आत्मा क्यों माया में फंसता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। परमात्मा भगवान विभू है तो आत्मा अणु है। क्वालिटी एक ही है, गुण दोनों में एक ही है, सच्चिदानंद। आत्मा भी सच्चिदानंद, पर दोनों में अंतर क्या है? मात्रा में अंतर है। यदि आप सोने का दृष्टांत लेते हो तो भगवान यदि करोड़ों अरबों टन का सोना है तो आत्मा एक छोटा सा है, छोटा सा, एक पॉइंट ग्राम भी नहीं है। सोना सोना है, दोनों सोना है, दोनों में गुण समान है, परंतु मात्रा की दृष्टि में। और जब मात्रा की दृष्टि में भेद आता है तो कुछ गुणों में भी भेद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए परमात्मा यदि समुद्र के समान है तो आत्मा जो है समुद्र के बूंद के समान है। यदि लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे तो समुद्र में जो गुण आएंगे वही उस बूंद में भी आएंगे। परंतु देखिए, गुण दोनों में एक है, परंतु मात्रा की दृष्टि में गुण कैसे बदल जाते हैं? कि देखिए, एक गरम गरम तवा है, पाव भाजी बनाने का रास्ते में होता है ना, गरम गरम तवा है, यदि उसके ऊपर वह समुद्र का बूंद गिरे तो फन 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 करके हवा हो जाएगा। परंतु उस गरम गरम तवे के ऊपर समुद्र को डालेंगे तो तवा कहां खो जाएगा वह भी नहीं पता चलेगा। तो मात्रा के दृष्टि से गुणों में भेद हो जाता है। तो यह है, भगवान विभू है, आत्मा अणु है। इसलिए आत्मा जो है कभी मायाबद्ध हो जाता है, माया में फंस जाता है, भगवान कभी माया में नहीं फंसते। ये एक प्रश्न आया है। सब लोग शरीर के ऊपर का चमड़ी को देखते हैं, स्वयं माता पिता भी गोरे हैं, उसको लगता है मेरी बेटी काली है तो उसे बार बार महीना टोना मारते हैं, डांटते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? काले है तो क्या हुआ है? आत्मा वाले हैं। वो गाने में थोड़ा बदल देना चाहिए, शरीर काले है तो क्या हुआ, आत्मा वाले हैं। वास्तव में किसी भी माता की बात छोड़ दीजिए, किसी को भी किसी के शरीर को नहीं देखना चाहिए। और जब हम किसी के शरीर को देखते हैं तो उससे द्वेष, राग, क्रोध उत्पन्न होता है। वास्तव में हम सब आत्मा हैं, और आत्मा न तो काला, न गोरा, न मोटा, न पतला, आत्मा का एक ही साइज होता है। और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसके नाते हम सब लोग परमात्मा के पुत्र हैं, हम सब लोग परमात्मा के बंधु, पुत्र होने के नाते हम सब उनके हम सब आपस में बंधु हैं। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और वास्तव में जो दोष देता है वो जीवन में बहुत दुख पाता है। तो इस प्रकार टोना मारने वाले वास्तव में दुखी होंगे, दूसरे जन्म में वो भी काले बनेंगे। कर्म का सिद्धांत है।